ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 39वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अमृत उद्यान में देशभर से शिक्षक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर भ्रमण करने आएंगे। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,817 करोड़ रुपए की लागत वाले डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सैफिरोजी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं और बोर्ड की करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्तियों को लीज पर देने के मामले में गिरफ्तार किया है। निदेशालय की टीम नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक से पूछताछ के लिए आज सवेरे उनके आवास पर पहुंची। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई की आलोचना की है।
अमानतुल्ला खान के खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, रिश्वतखोरी का मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से ईडी को लताड़ लग रही है, बावजूद इसके आप सुधरने का नाम नहीं। आप आंखें अरेस्ट करके लेके चले जा रहे हैं, किसी को भी पकड़ो, खाला पकड़ के गिरफ्तार करो, जेल में डालो, ये कौन सा न्याय है? तो इसलिए पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी अमानतुल्ला खान के साथ खड़ी है।
आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि विधायक खान को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए उनकी गिरफ्तारी की गई है। वहीं भाजपा ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का स्वागत किया है। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया है कि विधायक अमानतुल्ला खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में गैरकानूनी ढंग से भर्ती की है।
कानून अपना काम कर रहा है, वो विशेष सीबीआई जांच उसमें चली रही है, और जिस तरह से वो पैसा लोगों की भलाई के लिए खर्च हो सकता था उस पैसे का दमन किया है। तो जब आप चोरी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी को अपने नेताओं को समझाना चाहिए। तो जब आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो फिर इस बात को भी ध्यान रखिए कि जांच एजेंसी और कानून अपना काम करेगा और आपको हिसाब देना पड़ेगा।
दिल्ली से भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने आरोप लगाया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद सभी भ्रष्ट हैं। सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि विधायक खान ने समाज और जनकल्याण के लिए लगने वाले पैसों का दुरुपयोग किया है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही थी और आज ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने आज स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को जमानत दे दी। न्यायालय ने कहा कि विभव कुमार लगभग 100 दिन से जेल में हैं, उन्हें जमानत पर रिहा करने से मामले की जांच पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस पहले ही निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विभव कुमार को दिल्ली के मुख्यमंत्री के निजी सचिव के पद पर बहाल नहीं किया जाएगा और मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई आधिकारिक कार्यभार भी नहीं दिया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि जब तक सभी निजी गवाहों की जांच नहीं हो जाती, विभव कुमार मुख्यमंत्री आवास नहीं जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वाधान में दिल्ली यातायात पुलिस के सहयोग से दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इन अदालतों का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक द्वारका, करकरडूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, राउस एवेन्यू, साकेत और 30,000 कोर्ट परिसरों में किया जाएगा। इन अदालतों में सभी प्रकार के वाहनों के लंबित भुगतान और यातायात चालानों का निपटान किया जाएगा। राजधानी में अवैध रूप से रह रहे 8 विदेशी नागरिकों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके देश वापस भेज दिया है। ये सभी विदेशी नागरिक नाइजीरिया और युगांडा मूल के थे। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ये सभी विदेशी नागरिक वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रह रहे थे। वहीं दिल्ली पुलिस ने रोहिणी क्षेत्र के विजय विहार इलाके से मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें आपूर्तिकर्ता और विक्रेता दोनों शामिल हैं। इनके पास से उच्च गुणवत्ता का लगभग 1.5 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। दिल्ली नगर निगम ने नजफगढ़ क्षेत्र के राप्ता गांव में अवैध रूप से चल रही जींस रंगाई की 4 फैक्ट्रियों को सील किया है। नजफगढ़ क्षेत्र के निगम उपायुक्त बादल कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी सीलिंग योजना के अंतर्गत की गई है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज राजधानी में आयोजित इलेक्ट्रिक वाहन ईवी बाजार कार्यक्रम में ऐप आधारित डिलीवरी पार्टनर्स को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिलीवरी पार्टनर्स की वजह से लोगों का जीवन सुलभ हुआ है। श्री गहलोत ने लोगों से आग्रह किया कि सभी लोग मिलकर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएं। वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT द्वारा आज से दिल्ली हाट में छाप प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
दिल्ली हाट में शुरू हुई छाप प्रदर्शनी में देश भर से आए हथकरघा कारीगरों, शिल्पकारों, बुनकरों और डिजाइनरों के 160 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। इन सभी कारीगरों को वस्त्र मंत्रालय ने यहां आने के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। NIFT के छात्रों द्वारा भी अपने रचनात्मक उत्पादों का प्रदर्शन इस प्रदर्शनी में किया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय संगीत की जीवन ध्वनियों को प्रदर्शित करने वाले संगीत में प्रदर्शन तरंग का भी आयोजन किया जा रहा है। 14 दिन तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भारतीय शिल्प कौशल की कलात्मक का जश्न मनाना है। इस प्रदर्शनी में आगंतुकों का प्रवेश निःशुल्क है। प्रादेशिक समाचार के लिए रईसुद्दीन रिहान, दिल्ली।
नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने आज 39वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय नेत्र बैंक की अध्यक्ष डॉ राधिका टंडन ने सम्मेलन की अध्यक्षता की और कॉर्निया प्रत्यारोपण के महत्व और इस बारे में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए डॉ टंडन ने नेत्रदान से जुड़ी बाधाओं की चर्चा की और कहा कि ये कई लोगों को नया जीवन दे सकता है।
हमने एक्टिविटीज करी है स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। पूरे इंडिया में ये मैसेज फैले कि आई डोनेशन इज अ वेरी गुड थिंग, इट इज डन आफ्टर डेथ, देयर इज नो डिसफिगरमेंट, देयर इज नथिंग टू बी लॉस्ट, एंड वो आई डोनेशन से किसी और व्यक्ति के जीवन में रोशनी आ सकती है। क्योंकि जिनको कुछ भी नहीं दिखता है कॉर्निया के डैमेज की वजह से, उनका कॉर्निया ट्रांसप्लांट होकर उनको दोबारा दिखने लगता है। ये मैसेज भी पहुंचा रहे हैं कि आईज को हम कैसे प्रोटेक्ट करें, बिकॉज ज्यादातर हमारे यहाँ जो हाई डिमांड फॉर कॉर्नियाज है वो इन्फेक्शन एंड इंजरीज की वजह से है।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज वेक्टर जनित रोग लक्षण, रोकथाम और उपचार विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र की निदेशक डॉ तनु जैन और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉ पुनीत मिश्रा हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। श्रोता विशेषज्ञों से संक्रमण से बचाव तथा इसके लक्षण और उपचार के बारे में टेलीफोन नंबर 0112342105 और 0112331444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल भेजे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकेंगे। कार्यक्रम आकाशवाणी के गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से प्रसारित होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रपति भवन में जारी अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन संस्करण में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर देशभर के शिक्षक भ्रमण करेंगे। अमृत उद्यान का ग्रीष्मकालीन संस्करण 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला हुआ है। हालांकि 5 सितंबर को केवल शिक्षकों को ही उद्यान में प्रवेश मिलेगा। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
राष्ट्रपति भवन ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देश भर के शिक्षकों को अमृत उद्यान आने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भी देश भर के खिलाड़ियों ने राष्ट्रपति भवन के विशेष आमंत्रण पर अमृत उद्यान का भ्रमण किया था। अमृत उद्यान में इस बार आगंतुकों के बीच मौसमी फूल और पौधे आकर्षण का केंद्र है। इनमें बॉन्साई गार्डन, रोज गार्डन, सेंट्रल लॉन में विशेष किस्म के फूल आदि शामिल है। बच्चों के लिए ट्री हाउस, बाल वाटिका और शिक्षण कक्ष जैसी व्यवस्थाएं भी लोगों को खूब पसंद आ रही है। आगंतुक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक अमृत उद्यान में निःशुल्क भ्रमण कर सकते हैं। हालांकि उद्यान में प्रवेश केवल राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से शाम 5 बजे तक ही किया जा सकता है। उद्यान देखने के लिए टिकट राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट से बुक किए जा सकते हैं। आगंतुकों की सुविधा के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से निःशुल्क शटल बस सेवा उपलब्ध है। रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सुमित।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल 2,817 करोड़ रुपए की लागत वाले डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में मीडिया को यह जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के जीवन में सुधार और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, इसमें दो फाउंडेशनल पिलर्स रहेंगे, एक एग्री स्टैक, दूसरा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एग्री स्टैक में सारा बेसिक डेटा, किसानों का डेटा, जमीन का डेटा, क्रॉप का डेटा, ये सब रहेगा। और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में वाटर की अवेलेबिलिटी, ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी, वेदर रिलेटेड डेटा, कई तरह के जो किसानों को फैसले लेने के टाइम में जो इन्फॉर्मेशन और साइंटिफिक प्रैक्टिसेस चाहिए होती है, वो सारे रहेंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए 3,989 करोड़ रुपए की लागत वाली योजना को मंजूरी दी है। सरकार ने 2,291 करोड़ रुपए की लागत से कृषि शिक्षा और प्रबंधन को मजबूत करने का भी निर्णय लिया है। इसके अलावा 860 करोड़ रुपए की लागत से बागवानी के सतत विकास कार्यक्रम की अनुमति दी गई, 1,202 करोड़ रुपए की लागत से कृषि विज्ञान केंद्रों और 1,115 करोड़ रुपए की लागत से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को भी मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल की इस बैठक में 18,036 करोड़ रुपए की लागत से मुंबई और इंदौर के बीच 309 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। ये परियोजना 2028-29 तक पूरी हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों की शिकायतों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने समिति को एक सप्ताह के भीतर अपनी पहली बैठक करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसानों के मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए और समिति को चरणबद्ध तरीके से इस पर विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पार्टी के सदस्यता अभियान को शुरू किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोई भी अन्य पार्टी भाजपा जैसी पारदर्शिता और ईमानदारी से अपना सदस्यता अभियान नहीं चलाती है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को वायदों को कार्यों में बदलना होगा। राजधानी दिल्ली में आज हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 39वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अमृत उद्यान में देश भर से शिक्षक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर भ्रमण करने आएंगे। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल 2,817 करोड़ रुपए की लागत वाले डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।